ओम शांति। राजीव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य फूलों के द्वारा। राजीव भाई को मैं बहुत समय से जानती हूँ, जब से मैं ज्ञान में चली हूँ। राजीव भाई जब 4 साल के थे तब से ज्ञान में चल रहे हैं। उनके पेरेंट्स जो थे वो ज्ञान में चलते थे, तो 4 साल की उम्र से ज्ञान में चलते हैं और 42 इयर्स से वो मधुबन में रहते हैं। और इनका जो काम है वो बहुत जरूरी काम है, क्योंकि हम जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं मुरली के बिगैर नहीं रह सकते हैं। मुरली हमारा भोजन है, सब कुछ है। तो ये मुरली के डिपार्टमेंट में एक्टिवली भाग लेते हैं। जब दादी प्रकाशमणि जी थे वो उनके जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बहुत सारी बातें वो उनके साथ में करते थे। और अभी जितने भी मुरलियां हमारे पास आती है उनका जो भी तरीके से सिलेक्शन होता है वो ये करते हैं। इनके पास सब मुरलियां हैं, कोई भी देश की मुरली आपको चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अव्यक्त मुरली हो चाहे साकार बाबा की मुरली हो। और न केवल ये मुरली डिपार्टमेंट ही देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुरली का अध्ययन बहुत करते हैं। जो बातें आप सुनेंगे आज, जैसे कि कभी आपने सुनी नहीं हो कि जो गहराई जो मुरलियों की होती है वो बहुत गहराई में जाते हैं। और साथ साथ में रूरल विंग जो है, जहां पर कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जैविक खेती की जाती है, उनका उसमें भी बहुत कुछ भाग लेते हैं। इनका कहना है कि जब योग हम करते हैं उसकी जो एनर्जी है वो हम कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम पेड़ पौधों में डायरेक्ट करें, फ्रूट फल में डायरेक्ट करें, तो उसमें भी बहुत चमत्कारिक प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वो भी ये करते हैं, उसकी वजह से भी कई जगह पे ये जाते रहते हैं। तो हमारे जो भाई हैं बहुत विशेष भाई हैं, आप उनकी जो बातें हैं हर एक बात जो है बहुत गहराई से सुनना और समझना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी इनके बारे में कुछ कहने के लिए। तो मैं ये कह करके आपको ज्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि मैं बोलने लगेंगी तो आप इनका नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जितने हो सके सामने की चेयर्स पे भी आ सकते हो, जिनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, सारा सामना भरा खाली है, सब आ जाइए। जितना नजदीक में होंगे उतनी परिवार की भावना महसूस होगी।
ओम शांति। हम सभी
एवरीबॉडी गेटिंग द ट्रांसलेशन।
ब्राह्मणों का भोजन मुरली, और ड्रामानुसार मुझे कहते हैं मुरली वाला भाई, मुरली वाला राजू, क्योंकि मुरली की सेवा मुझे आज से 36 ईयर पूर्व 1976 में 76 में मिली। मधुबन में मैं 72 में समर्पित हुआ, बहुत छोटी आयु थी। 71 में मैं पहली बार मधुबन आया 15 साल की उम्र में, और मधुबन में आकर के बाबा का परिवार का ऐसा जादू लगा कि मुझे यहीं रहना है, यहीं सेवा करनी है। तो दादियां कहने लगी कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी 2-4 साल और पढ़ाई कर लो फिर आना। मैं उस समय 9th में पढ़ता था, और उस समय भी बाबा तो शुरू से अगली दिवाली नहीं आएगी, विनाश आया कि आया, पक्का था, हमारे पिताजी को, लौकिक पिताजी को बहुत निश्चय था। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा कि अगर मधुबन में छुट्टी मिलती है सेवा करने की तो आप भले वहां रह सकते हो। वैसे मैं परिवार में इकलौता बेटा था, तीन पिताजी, तीन भाई थे, उनका अकेला बेटा, जो तीनों की प्रॉपर्टी थी, तीन की दुकान थी, तीन की खेती थी, उसके बीच में एक मालिक और वो सरेंडर हो जाए, घर छोड़ के बाहर आ जाए, तो लोगों को लगता है ये कौन सा ज्ञान है। लेकिन जब मैं मधुबन में आया और मुझे इतना अच्छा लगा, हमारी दीदी मनमोहिनी की बहुत परखने की शक्ति थी, बाबा तो जानी जाना ना रहे ही, लेकिन जिनको बाबा ने यज्ञ सौंपा दीदी और दादी को, वो भी सामने वाले की पूरी जन्म पत्री को पढ़ लेते थे। तो मुझे देखते ही उनके संकल्प चले कि ये बालक जो है यहाँ के लायक है। तो दीदी ने दादी को कहा, दादी प्रकाशमणि जी मुख्य थी दीदी के साथ, कि इससे बात करो, ये मधुबन में रहना चाहता है तो इसको पूछो। तो दादी मुझे अकेले में, बगीचा है मधुबन में जो बाबा की कुटिया के पास, वहां झूला पड़ा है, उस झूले पर ले गई और मुझे अपने साथ बिठाया और पूछने लगी, तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे कितने भाई बहने हैं लौकिक में, तुम्हारे पिताजी कितने समय से ज्ञान में हैं, सूरा पूरा बायोग्राफी पूछी। तो मैंने तो सब बता दिया सर सच कि ऐसा है। तो कहने लगी, तुमसे मैं बात क्या करूं, तुमको तो छुट्टी मिलने वाली शायद नहीं है, क्योंकि जो अकेला बेटा होता है उसको परिवार वाले छोड़ते नहीं हैं, दो चार भाई होते तो छुट्टी मिल जाती। हमने कहा, दादी वो आप ख्याल नहीं करो, वो मैं छुट्टी ले लूंगा, आप मुझे छुट्टी दो, मैं यहाँ रहूं। तो दादी ने कहा, ठीक है तुम एक बार जाओ और एक साल और पढ़ाई कर लो, हाई स्कूल कर लो, और साथ साथ पिताजी की चिट्ठी लेकर के आना, अगर वो छुट्टी देते हैं तो यज्ञ के नियम अनुसार उनकी लिखित छुट्टी चाहिए। तो मैं जब यहाँ से गया मधुबन से वापस लौकिक गांव में, तो पिताजी को सुनाया कि ऐसे ऐसे दादी ने कहा है और आप हमको छुट्टी देंगे। तो उनको तो इतनी खुशी हुई, कहने लगे, अगर तुमको चांस मिलता है, भगवान इस धरा पर आए और मेरे परिवार के सदस्यों को चुन ले, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, तुम सरेंडर हो जाओगे तो मैं भी हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप हमको चिट्ठी दो, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर भगवान के रुद्र यज्ञ में मेरे बेटे सफल होते हैं तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, इसलिए मैं बहुत खुले दिल से छुट्टी देता हूँ, और अगर मुझे भी चांस मिलेगा तो मैं भी बाबा की सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। मैं 72 में पत्र लिया और हाई स्कूल का पेपर, जिस दिन लास्ट पेपर का पेपर था, उस दिन ट्रेन ली और सीधा मधुबन आ गया बिना रिजर्वेशन के। तो दादी ने मुझे देखा, कहती, तुमको छुट्टी मिल गई? मैंने कहा, दादी मैं चिट्ठी लेके आया। तो दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, 72 में मैं आया, और 72 में दीदी और दादी अचानक बीमार पड़ी, लास्ट में दिसंबर में, मैं अप्रैल में आ गया था। तो दीदी और दादी दोनों इलाज के लिए बॉम्बे गई, बॉम्बे में थी तो मधुबन का बहुत छोटा परिवार था, और बाबा अव्यक्त हुए थे तो दीदी दादी से सभी का बहुत प्यार था। तो दादियों ने कहा कि भले जिसको मिलने के लिए आना है बॉम्बे आ सकते हो। तो सभी का नंबर लगा, लेकिन जो टाइप करता था भाई उसका नंबर नहीं लगा, क्योंकि मुरली इतनी इम्पोर्टेंट सेवा थी और टाइपिस्ट वो अकेला था। मुरली के प्रश्न उत्तर निकालना, कार्बन कापियां निकालना, स्टेंसिल काटना अकेले ही वो करता था। तो मुझे कहता है तुम टाइप सीखोगे, मैं भी टाइप सिखा के मुक्त होना, फ्री होना चाहता हूँ। और मैं तो स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ से ही आया था, पढ़ रहा था। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा चांस है, मुझे आप हिंदी टाइप सिखा दो। तो दादी से सब दीदी से जब फोन पर पूछा कि एक कुमार यूपी से है और हिंदी बहुत अच्छी है उसकी, आप हमको छुट्टी दो तो मैं इसको टाइप सिखा करके इसको सहयोगी बनाऊं। तो दीदी दादी ने कहा कि अगर उसको हिंदी सीखनी है, टाइप सीखनी है, तो बोलो उसको सिंधी सीखे, क्योंकि बिना सिंधी सीखे टाइप काम नहीं आएगी। दादियों के पत्र, बाबा की मुरलियां, लिपि हिंदी है लेकिन राइटिंग सिंधी है। जैसे रोमन इंग्लिश लिखते हैं ऐसे ही बहुत सरल भाषा में हिंदी शब्द सिंधी में उर्दू की तरह लिखे जाते, और दादी दीदी सभी वही मुरलियां पढ़ते, पत्र भी वैसा ही लिखते। तो मैंने कहा कैसे सीखूंगा मैं सिंधी में, तो पक्का ही यूपी का हिंदी वाला। तो दादा विश्व रतन मधुबन में थे और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट बाबा के, पक्के अनिष्ट बच्चे थे। उन्होंने कहा मैं तुमको सिंधी सिखा देता हूँ और तुम मुझे रोज एक घंटा मेरे पास आना। तो मैं 7-8 दिन दादा के पास सवेरे सवेरे जाता था डायरी पेन लेकर के, और मैं यहाँ पर करीब 7-8 दिन में सिंधी पढ़ना लिखना सीख गया। और जब सीख गया तो दादियों ने कहा कि भले अभी टाइप सिखाओ इसको। तो मैं सिंधी पहले पढ़ना सीखा, लिखना भी सीखा और फिर टाइप सीखी। जब टाइप सीख गए, सिंधी सीख गए, तो दीदी दादी वापस मधुबन में आई और दीदी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है तुम सिंधी पढ़ना सीख गए, लेकिन अगर तुम मेरी राइटिंग पढ़ना सीख गए तो समझो पास। क्योंकि दीदी की राइटिंग बड़ी वंडरफुल थी, वो स्कूल तो पढ़ी नहीं थी, और शॉर्ट हैंड उनकी बड़ी वंडरफुल थी। जब प्रश्न निकालती थी मुरली के तो ड्रामा की जगह पर डी लिखती थी, परमात्मा की जगह पर पी लिखती थी, आत्मा की जगह पर ए शब्द लिखती थी, ये शॉर्ट हैंड थी। तो दीदी की राइटिंग पढ़ने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दादियों ने मुझे बहुत साथ दिया। जब मुझे नहीं पढ़ना आता था तो मैं किसी दादी के पास बैठ जाता था, दादी इसका अर्थ बताओ, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। सीखने की भावना थी इसलिए मैंने बहुत जल्दी दीदी की राइटिंग पढ़ना सीख लिया। और 73-74 में दीदी ने मुझे अपने साथ पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर टाइप करना, ये सेवा दे दी। कार्बन कापियां निकलती थी उस समय, फोटो कॉपी मशीन नहीं थी, कॉपियर नहीं थे। टाइप करता था मैं, 5-7 कापियां, एक एक पेपर आता है पत्र का, इनलैंड में उत्तर लिखते थे तो वो इनलैंड पेपर 5-6 कापी कार्बन से निकालते थे। एक बार, दो बार, तीन बार दीदी की डायरी से प्रश्न उत्तर लिख करके, और नियम बना था जितने पत्र आते थे सभी सेंटर्स के, उस समय विदेश तो था नहीं, भारत के ही अंदर सेंटर थे, तो दीदी सभी पत्रों का उत्तर जैसे बाबा देते थे ऐसे दीदी लिखते थे। और एक तरफ मुरली का सार होता था प्रश्न उत्तर के रूप में, और दूसरी तरफ छोटे से पेज पर पत्रों का उत्तर। तो ये सेवा मुझे दीदी के साथ मिली और मैं 3 बार 4 बार 5 बार कार्बन कापियां 5-10 जैसा भी सहज होता निकालता था और उसके पीछे पर पत्रों का उत्तर लिखता था। अचानक 76 में वो भाई जिसने मुझे सब सिखाया था उसको कोई कारण से वापस जाना पड़ा, लौकिक चला गया। और जब वो लौकिक में गया तो पूरी डिपार्टमेंट मुरली की मुझे मिली, टाइप करना, पूरा सेटिंग करना। और उस समय ये आज का साइंस नहीं था, कॉपी प्रिंटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, स्टेंसिल काटते थे हम, और स्टेंसिल भी जितनी मुरलियां बढ़ती गई, हमने जब शुरू की मुरली टाइप करना उस समय 200-250 मुरली छपती थी, आज तो हजारों में छपती हैं, लाखों में छपती हैं, सभी भाषाओं में छपती हैं। लेकिन शुरुआत में मधुबन के अंदर सिंधी और हिंदी दो ही मुरलियों की कापियां निकलती थी, तो मेरी ड्यूटी हिंदी मुरली की थी। मैं टाइप करता था, जितनी कापियां बढ़ती जाती स्टेंसिल बार बार काटना पड़ता था। यहां तक मैंने टाइपराइटर पर एक मुरली 4 बार स्टेंसिल काटे, माना अगर 1200-1300-2000 मुरली निकालनी है तो 3-4 बार स्टेंसिल काटने पड़ते थे, और स्टेंसिल टाइप करते उनको करेक्शन करना, पूरा दिन मेरा यही, सुबह से रात तक केवल मुरली, एक तरफ प्रश्न उत्तर एक तरफ मुरली, और कोई काम नहीं। और फिर दीदी दादी जब मुरली पढ़ती थी देखती थी तो दीदियों का दादियों का बहुत ध्यान जाता था कि मुरली के अंदर सीधी सीधी मुरली होती है ओम शांति से नमस्ते तक, जो बाबा ने मुरली चलाई है उसके अंदर ये प्रश्न उत्तर इस सेंस ये धारणा ये वरदान स्लोगन ये कुछ भी नहीं था। बाबा की सीधी मुरली गीत बजता था ओम शांति करके बाबा बोलते थे, और पाकिस्तान के अंदर जब तक रहे तब तक बाहर से एंटर नहीं थे, घर में ही बच्चे थे, 400 के लगभग परिवार था, तो बाबा उरली मुरली सुनाते थे और बच्चे डायरी में नोट्स ले लेते थे, छपती नहीं थी। या कभी कभी जब बाबा बाहर चले जाते थे, जैसे कुछ समय कश्मीर में रहे कुछ समय अन्य स्थानों पर गए, तो बाबा फिर लिख करके भेजते थे मुरली, हाथ से लिखी हुई मुरली पे दादियां पढ़ती थी और वो पढ़ करके या जवानी उसको क्लास के अंदर सुनाती थी, सत्संग के रूप में था, उसकी प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो 14 साल तक 36-37 में मुरली शुरू हुई। मुरली माना बाबा पहले गीता पाठ करते थे, साकार में लौकिक में गीता का बहुत प्यार से अध्ययन करते थे, लेकिन जब शिव बाबा प्रवेश हो गए ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चला, गीता सामने होती थी लेकिन बाबा के मुख से वो गीता उच्चारण होती थी ऑटोमेटिक, उरली पढ़ करके नहीं, वही गीता का ज्ञान शिव बाबा ब्रह्मा मुख से अपने आप उच्चारण करते, और जो सुनने वाले होते थे उसको बहुत गहराई से समझ करके जीवन में धारण कर लेते थे। गीता पढ़ने से धारणा नहीं होती, लेकिन शिव बाबा की शक्ति से पूरा का पूरा क्लास पवित्र और योगी बने, शाकाहारी बने, मन मनाभाव के मंत्र को समझे, तो सभी नियमों को पालन करने लगे। आपने सुना होगा कहानी यज्ञ की, कि जब काम क्रोध नरक का द्वार बाबा ने कहा तो माताओं बहनों ने उसको सीरियस बहुत प्रतिज्ञा के रूप में अपना लिया, ये महाशत्रु है, मैं अभी इन विकारों का त्याग करती हूँ। और जब विकारों का त्याग किया तो घर घर के अंदर झगड़े हो गए, बहुत हंगामे हुए, क्योंकि कोई ने ये तो सिखाया ही नहीं था कि शादी किए हुए युगल पवित्र कैसे रहेंगे, वो तो समझते हैं शादी इसीलिए की जाती है, और बाबा ने तो एकदम पक्का कर दिया कि तुम रहो घर गृहस्थ में लेकिन विकारों की आग नहीं लगनी चाहिए, पवित्र बनो योगी बनो, पहले दिन ही मंत्र पढ़ाया। अब जब पवित्र और योगी बनने लगी कन्या माताएं तो क्या होगा, सारे भाई जो विदेशों में नौकरी करते थे घरों में आए तो उनको नमाज खाने को मिले, न घर में कोई ऐसी चीज देखने खाने को मिले, और ये कहें हम तो पवित्र हैं योगी हैं, अभी हाथ नहीं लगाना मुझे, टच नहीं करना, घर घर के अंदर झगड़े हो गए। और इतने झगड़े हो गए जो बाबा के ऊपर भी केस कर दिया लोगों ने कि ये कौन सा ज्ञान है, ये किसने इनको सिखाया है, और बाबा जिसको ही कहता है जिसको देखता है वो सब ट्रांस में चले जाते, सतयुग में चले जाते, वैकुंठ में चले जाते, ये शायद बाबा कोई जादू सीख के आया है, और बाबा तो कहता मैं कुछ नहीं करता है, ब्रह्मा बाबा को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, करण करावन हार शिव बाबा उसके द्वारा खेल कर रहा था। तो बाबा ने ऐसी जादू खेली तो तो सारे ब्राह्मण जितने बाबा के बच्चे पक्के थे देवता धर्म वाले, वो सब विरोध सहन करते भी बाबा के पास समर्पित हो गए। और समर्पित हो गए तो फिर बाबा ने उनको बहुत अच्छी पालना दी। साथ में रहे 14 साल, 2 साल तो हैदराबाद में थे, 12 साल कराची में रहे। लेकिन कराची के अंदर जो छोटी छोटी बहनें थी उनको ट्रांस का बहुत अच्छा पार्ट मिल गया। गुलजार दादी नंबर 1 संदेशी थी, 9 साल की उम्र में समर्पित हुई, माँ के साथ आई। और भी बहुत सारी संदेशियां थी जो मास मास ऊपर ट्रांस में रहती थी। सब सतयुग के दृश्य, ज्ञान के दृश्य, बहुत सारे राज ऊपर देखती थी, नीचे आके सुनाती थी, ये देखा ये देखा ये देखा। तो ऐसे ही खेल पाल करते, तपस्या करते 12 साल कराची में बीत गए। और उसके बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। 47 में जो हिंदुस्तान के लोग थे, जो हिंदी जानने वाले हिंदू थे, वो सब भारत आ गए और बाकी पाकिस्तान में रह गए। 2 भाग बन गए भारत के, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। तो बहुत से संबंधी बाबा के यहाँ आ चुके थे 47 में, सब भाग करके वहां से सब छोड़ के आए थे वहां। और बाबा 1950 तक वहीं थे, 50 तक। तो जो संबंधी भारत में आ गए थे उन्होंने बाबा को संदेश दिया, निमंत्रण दिया कि आप कैसे भी करके यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, वहां तो आपको कोई करने नहीं देगा, दूसरे देश की दूसरी कंट्री है। तो बाबा ने शिव बाबा का संदेश भी यही सुना। शिव बाबा ने भी कहा कि बच्चे तुम पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करोगे, वहां से संदेश दोगे, भारत भूमि महान भूमि है। तो ये मुरलियां बाबा की चली और बाबा ने 1950 में पूरी संस्था को ट्रांसफर किया। अब जब संस्था ट्रांसफर हुई, वहां से आने लगे, तो सबके पास सबसे ज्यादा जो वजन था, उन्होंने कहा जो चाहिए ले जा सकते हो, सब ले जाओ आप। एक स्टीमर बुक किया तो 400 भाई बहनों का सामान, खाने पीने का सामान, कपड़े, आप समझ सकते हो कितना सामान होगा। और 400 लोग उसी स्टीमर के अंदर। तो सबसे ज्यादा लोड था डायरी का, मुरलियों का, क्योंकि सब ने अपनी अपनी डायरियां लिखी हुई थी और सबका उसके अंदर प्यार भी था कि मैं ये मुरली जरूर अपने साथ ले जाऊं। तो बाबा ने बड़ा युक्ति से उनको मुक्त किया कि ऐसे अगर यही ले जाओगे तो खाने पीने का सामान नहीं साथ जाएगा, दूसरे सामान नहीं जाएंगे। इसलिए कहा कि बच्चे जो तुमने लिखा है अभी तक वो सब इकट्ठा करो। एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक मंगवाया और उस लोहे के टैंक में सारी डायरियां सबकी डलवाई। कहा बच्चे ये जमीन में खोद करके रख दो, ऊपर से मिट्टी से ढक दो, और जब द्वापर में भूकंप होगा तो आपकी इन डायरियों से शास्त्र बनेंगे। नहीं तो शास्त्र कैसे बनेंगे, कोई तो ज्ञान चाहिए ना, आधार तो चाहिए। तो वैसे बहने ये किताबें छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन बाबा ने ऐसी युक्ति रची जो जितनी मुरलियां उस समय इन्होंने लिखी थी वो सब डायरी बॉक्स के अंदर भरी और नीचे जमीन के अंदर दबा दिया हुई कराची के अंदर। अब यहां पर वहां का ज्ञान आया नहीं। कुछ डायरियां थी जो अभी मिल रही हैं, वो दे नहीं रहे थे, लेकिन जब शरीर छोड़ते तो मिल जाती है ना, तो वो डायरियां मुझे मिली हैं। कभी कभी मैं उनको पढ़ता हूं और भेजता हूं किसी न किसी रूप में, लेकिन बहुत थोड़ी डायरियां, करीब 8-10 ही डायरी मुझे मिली। उस समय का ज्ञान 50 तक जो बाबा ने सुनाया वो भारत तक नहीं पहुंचा, कराची तक ही रह गया। फिर जब यहां आए तो यहां पहले कोई सेवाएं तो इतनी थी नहीं, 2 साल तो परीक्षा का समय था, वो भी सुना होगा बेगरी पार्ट। और वो बेगरी पार्ट ऐसा था, अगर वो यज्ञ में बेगरी पार्ट नहीं होता तो हमारा सबका जन्म नहीं होता, क्योंकि बहनें समझती थी बाबा के साथ ही रहना है, तेरे साथ खाना है, तेरे साथ मरना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। दर पर आए हैं कसम लेके वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने ऐसा पड़ा कड़ा पेपर लिया जो सबकी बुद्धि में हलचल हो गई, अब क्या होगा। और वो पेपर था कि इतने सब भाई बहने, एक तो यहाँ की मौसम के अनुसार ठंडी बहुत थी, बरसात बहुत थी माउंट में, बीमार पड़ गए, क्यों गर्म देश से आए थे, कपड़े भी ठंडे नहीं थे, कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे। तो 1950 में आते ही यहाँ बीमारियां शुरू हो गई, बरसातें बहुत माउंट पर, फाग बहुत बहुत ठंडी, तो सब दादियां एक तो पहले बीमार पड़ी और दूसरा धीरे धीरे जो लाए थे वो खा करके खत्म कर दिया। खाने के लिए अन्न नहीं, भोजन नहीं, पैसा भी खत्म हो गया। और जिन्होंने कहा था आप ले आओ संस्था को, हम मदद करेंगे, उन्होंने सोचा अभी ये संस्था टूट जाएगी तो हमारी बच्चियां वापस आ जाएंगी। बहुत युक्ति से उन्होंने बुला लिया और बुलाने के बाद कहा कि आप लोग अपने आप चलो जैसे चला सकते हो, नहीं तो हमारे पास भेज दो हमारी बच्चियों को। तो बाबा ने भी बड़ी युक्ति रची, पेपर लिया और कहा कि बच्चे जाओ, तुमको बाबा ने इतना धन दिया है, इतने रिचेस्ट हो तुम, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मांगने से मरना भला, मांगना नहीं, तुम ज्ञान रत्नों का दान करो, और ज्ञान रत्न दान करोगे तो वो धन तो पीछे पीछे आ जाएगा। तो थोड़े जो कच्चे थे उन्होंने समझा मैं नौकरी कर लूं, मैं कुछ कमा के ले आऊं, बाबा को मदद करूं। बाबा ने कहा बच्चे सरेंडर इसलिए नहीं हो, तुमको नौकरी करने के लिए बाबा नहीं भेजेगा, अगर तुमको सच्चा बाबा से प्यार है तो तुमको जो बाबा ने दिया उसका दान करो। तो जो कच्चे थे वो तो चले गए अपनी दुनिया में, मायावी दुनिया में गए और माया ने उनको अपना बना लिया। लेकिन जो पक्की दादियां थी, बहुत पक्के निश्चय बुद्धि, बाबा ने कहा और उन्होंने लिया, चित्र उठाए, चित्र बने हुए थे हाथ के, और गए गंगा जमुना नदियों के किनारे पर बैठ गए और ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो 1953-54 में भारत के अंदर सेवाएं प्रारंभ हुई, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, इस तरफ केंद्र खुले। तब बाबा की मुरली, मुरली से कनेक्ट कर रहे हैं, हाथ से कुछ कापियां निकाल निकाल करके इन दादियों को भेजी जाती थी, इसलिए वो मुरलियां भी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। बाबा ने ज्ञान को बहुत धीरे धीरे स्पष्ट किया, एक साथ नहीं सुनाया। कई ऐसी ज्ञान की बातें हैं, आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्मलोक की, तीनों लोकों की, ये शास्त्रों के आधार से ही बाबा पहले सुनाते रहे। आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठाकार काफी समय तक मुरलियों में आता रहा। शिव बाबा कौन है, ब्रह्मलोक क्या है, आत्मा क्या है, बाबा ने बहुत धीरे 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 ज्योति बिंदु को स्पष्ट किया। और जब स्पष्ट हो गया ज्ञान 62-63 तक, 8-10 साल लगे, मुरलियां छपती थी पहले, 100 कापी 50 कापी निकलती थी, लेकिन जब स्पष्ट हो गया तो बाबा ने कहा बच्चे ये जो पुराना ज्ञान है इसको अभी जला दो, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आधार से ही, इस शास्त्रों के आधार से बाबा ने सुनाया, लेकिन जब स्पष्ट हो गया है तब से तुम्हारा पूरा संपूर्ण ज्ञान प्रारंभ होता है पढ़ाई का। तो 62-63 में हम लोग ज्ञान में आ गए थे। मुझे याद है 1960 जब मेरी आयु बहुत छोटी थी तब मम्मा ने मेरे ही घर में, लौकिक घर में, यूपी के एक छोटे से गांव में गीता पाठशाला खोली, वहां गई थी और 35 दादियों के साथ गई थी एक बस भर के, जहां अभी तक भी बिजली पानी ऐसी कोई सरकारी साधन नहीं है, इतना छोटा गांव है यूपी में। उस गांव में मम्मा कैसे गई होगी आप समझ सकते हो, ले गए थे एक बैल बस में, छोटी बस किया था, 35 दादियां थी, और फिर अपने गांव में बैलगाड़ी से घुमाया था, मम्मा ने 1960 में मेरे घर में गीता पाठशाला खोली थी और पिताजी का मुरली से इतना प्यार था तो सब मुरलियां उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी पिछली पुरानी। जब बाबा का डायरेक्शन 62-63 में निकला कि वो मुरलियां जला दो तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा तो कहते हैं मैं इन मुरलियों को एक बोरा के अंदर भर करके एक जगह पर पैक कर दिया कि ये काम तो आएंगी, जरूरत क्या है जलाने की, बेचूंगा नहीं फेंकूंगा नहीं, कभी तो ये रतन है बाबा के, हम जलाएंगे नहीं। लेकिन उसमें दीमक लग गई और वो सब मुरलियां नष्ट हो गई, एक भी नहीं बची। 63-62 के बाद की मुरलियां, 68 तक बाबा की मुरली चली, 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए, कितने साल की मुरली बची? 63, 64, 65, 66, 67, 68 करीब 5-6 साल की मुरलियां हैं जो मुरलियां अभी रिवाइज हो रही हैं, साकार बाबा की मुरली। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो श्री बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, कुछ महावाक्य उस समय की न्यूज के आधार से थे। ब्रह्मा बाबा न्यूज सुनते थे और भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती थी, कभी हमारी प्रदर्शनी लगती बहुत विरोध होता था, कभी सन्यासी हमारा विरोध करते थे, कभी आर्य समाज बहुत विरोध करता था, बहुत सारी बातें हमारे ज्ञान की नई नई बातें थी, लोग सुन करके भड़क जाते थे कि ये तो हिंदू धर्म का ही नहीं है, ये तो अपने सनातन धर्म को काटते हैं, खंडित करते हैं, ये भगवान को निराकार मानते हैं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते हैं, बहुत सारी विरोधाभास की बातें थी। और इसके कारण हमारी कहीं प्रदर्शनी होती थी, कोई प्रोग्राम हम करते थे तो वो लोग कहीं आग लगा देते थे, कहीं हंगामा करते थे। तो बाबा की मुरलियां चलती थी, बच्चे चित्रों को इंसोर्ड कर दो, पुलिस का पहरा रख दो, फिर कहते थे ये तो सन्यासी ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो बच्चे विरोध करेंगे, ये अपने धर्म के नहीं है, बहुत सारी बातें मुरली में चलती थी क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। तो जब मैंने मुरलियां टाइप करना शुरू किया 76 से, तो मुरलियों में कोई ऐसी बातें जो कटाक्ष की, दूसरे लोगों को जो ठेस पहुंचाने वाले शब्द होते, ब्रह्मा बाबा तो सुनते थे और बोल भी देते थे, तो उन शब्दों को हमने दादी की परमिशन से, दादी के कहने से कि ये बातें अभी के अनुसार ठीक नहीं है, अभी वो समय नहीं है, अभी हमारे क्लास में सब प्रकार के लोग आते हैं, सन्यासी भी बैठते हैं आकर के, वो भी ज्ञान को समझते हैं सुनते हैं, बाबा ने जब बोला था उस समय के लिए वो ठीक था, लेकिन अभी के अनुसार समय अनुसार इस बात को नहीं छपना चाहिए। इसलिए साकार मुरलियां जब मैंने टाइप करना शुरू किया तो दादी जी मुरली लेती थी और पूरी मुरली पढ़ करके उसमें ब्रैकेट में उसको कहती थी इस बात को अभी निकाल दो, इसको छापो नहीं। इसलिए साकार मुरलियों में बहुत करेक्शन किया गया, एडिशन कुछ नहीं किया गया, करेक्शन जरूर किया समय अनुसार। और वो एडिशन ये किया, एडिशन जो हमने किया वो किया ऊपर इसेंस, क्वेश्चन आंसर, धारणा का सार, वरदान और स्लोगन, ये एडिशन है, मुरली के अंदर कोई एडिशन नहीं है। मुरली में करेक्शन जरूर है, अगर कोई समय अनुसार बात जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 45 साल 50 साल पहले की मुरली है और अभी समय एकदम चेंज हो गया। ज्ञान में कोई करेक्शन नहीं है, ज्ञान जितना शिव बाबा ने दिया, आत्मा का, परमात्मा का, तीन लोकों का, पुनर्जन्म का, कर्मों का, उस ज्ञान में मुरली का कोई एक शब्द भी करेक्ट नहीं है, करेक्शन नहीं किया गया है। जो बाबा ने बोला वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है और उसको हम वैसे का वैसा रखते हैं। लेकिन जहां पर ब्रह्मा बाबा के अनुभव, प्रैक्टिकल कोई बातें, उस समय की सिचुएशंस, उसके आधार से अगर कोई जरूरी नहीं होता तो उसको कट किया जाता है। एडिशन इसलिए कराई दादी ने, कई VIPs क्लास में आते और बहुत कम समय उनके पास होता, एक घंटा भी नहीं दे पाते हैं, वो कहते हैं हमको बहन जी इसे सुना दो, आज की मुरली का सार क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो दादियों ने ये बहुत युक्ति रची कि कैसे हम उनको इसेंस दें। और कोई फोन पर कहता है सुना दो 5 मिनट में 7 मिनट में, तो मुरली के ऊपर मुरली से ही, साकार मुरली से ही उसका एसेंस, उसमें क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद जो धारणा की मूल बातें हैं जिन पर हम पूरा अटेंशन रखें वो नीचे, ये लिखना हमने, मैं समझता हूँ 78 के बाद 79 80 से शुरू किया। मुरलियां जो साकार की थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन जब साकार बाबा अव्यक्त हुए, 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, 2 दिन तक बहुत कंफ्यूजन थी अब क्या होगा। कोई भी संदेशी बाबा के पास जाती थी तो ऊपर जो वतन में देखती थी वहां एक बैनर होता था ड्रामा, ड्रामा के सिवाय न बाबा मिलता था न शिव बाबा मिलता था। अब क्या ड्रामा है पता ही नहीं। दादियां कहें अभी क्या होगा, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, अचानक चले गए, अब मुरली कैसे चलेगी, यज्ञ कैसे चलेगा, पालना कैसे होगी, क्या होगा, कोई क्लियर नहीं था। 19 और 20 जनवरी तक कोई क्लियर नहीं। 69 में बाबा का बॉडी पड़ा है, शरीर रखा हुआ है, योग चल रहा है, सभी भाई बहने विचार कर रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जब 21 तारीख को संस्कार हुआ तो उसके बाद दादी को, गुलजार दादी बहुत नंबर 1 ट्रांस मैसेंजर थी, दोनों दादियों ने इनको कहा कि आप बाबा को भोग लगाओ। तो संस्कार के बाद सभी स्नान को घरा करके जब बैठे आके क्लास में, तो भोग लगाने के लिए दादी गई, और जब भोग लगाने गई तो बाप दादा दोनों आत्माएं प्रवेश हो गए। और वो जो 2 घंटा 3 घंटा बाबा की मुरली चली अव्यक्त बाबा की, उसमें बाबा ने आगे यज्ञ को कैसे चलाना है, मुरली कैसे अभी रिवाइज करनी है, बाबा ने उसी में डायरेक्शन दिया कि बच्चे जो भी पढ़ा जाता है पेपर के समय उसको रिवाइज किया जाता है। पढ़ाई का कोर्स जितना था वो पूरा हो गया, चारों सब्जेक्ट बाबा ने साकार में सब पढ़ा दिया है, नई पढ़ाई अभी नहीं होने वाली है, लेकिन उसी पढ़ाई को बार बार तुम बच्चों को रिवाइज करना है। और जो बाबा ने रखाई है मुरलियां 63 से 64 से वही रिवाइज होंगी, पिछला कोई कोर्स रिवाइज नहीं होगा। तो बाबा ने 21 तारीख को ये सब डायरेक्शन दिए, दीदी और दादी को कलश देकर के ऊपर कलश रखा और इनको मुख्य प्रशासिका सह प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया। दीदी दादी ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब अपने हाथ में यज्ञ को बाबा ने उनको सौंपा तो बाबा ने कहा बाबा कहीं गया नहीं है, आप बच्चे ये नहीं समझो बाबा चला गया, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा की आत्मा वतन वापस नहीं जा सकती है, मूल वतन। अभी तक हम 45 वर्षों से अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही एक आत्मा है जो पुनर्जन्म में नहीं आई है, वही एक आत्मा है जो अभी तक शरीर छोड़ने के बाद 45 वर्षों से अभी प्रवेश होती है, पालना देती है, पढ़ाती है। वो 21 जनवरी का दिन था जब बाबा ने अपने पार्ट को स्पष्ट किया कि अब अव्यक्त रूप में जब बच्चे याद करेंगे, जब बुलाएंगे, तब बाबा आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे बाबा को कार्य पड़ते थे, दीदी दादी तो संभालने लगी यज्ञ को, लेकिन कई बातें आती हैं, पता नहीं होता है कैसे चलाना है, फटाफट बाबा दादी को, गुलजार दादी को बिठा देती थी, भोग वोग नहीं होता था उस समय, गद्दी बाबा के कमरे में जो गद्दी है, देखा होगा आप लोगों ने जो गए हैं पांडव भवन में, गद्दी पर गुलजार दादी बैठ जाती थी, बाबा को बुला लेती थी, दीदी दादी दो ही और यीशु दादी लिखती थी उस समय, 3 जने बाबा के सामने होते थे और बाबा गद्दी पर आ जाते थे। फिर बाबा को जो बातें, जो कारोबार, जो करना, जो डायरेक्शन लेना, वो सब पूछ लेते थे, क्या करना बाबा अभी। 69 और 70 में बाबा ने हर दूसरे तीसरे दिन मुरली चलाई, मिला दादियों को, जब बुलाया तब आया। यहाँ तक भी एक बार एक गाड़ी आई, पहली गाड़ी, मधुबन में गाड़ियां नहीं थी, एक छोटी गाड़ी आई, पहले एक बड़ी गाड़ी थी, पुरानी एकदम, एक किसी ने कार दिया, एम्बेसडर कार उस समय चलती थी, कोई ने सेंटर से भेजा यहाँ कार, तो दीदी दादी ने कहा कि मैं भी इसमें कैसे बैठूं, पहले इसमें बाबा बैठे। तो कार में एक ड्राइवर था और दीदी दादी और गुलजार दादी, तीन दादियां चक्कर लगाने निकली, और जो उधर अनादरा पॉइंट है वहां पर ले गई गाड़ी को, और गुलजार दादी को बोलती हैं कि बाबा को बोलो इसका उद्घाटन करें, तब दादियां बैठेंगी नहीं तो नहीं बैठेंगी। गुलजार दादी गाड़ी में बैठे बैठे बाबा के पास चले गए, वहीं पर खड़ी किया गाड़ी, गुलजार दादी गई और बाबा आ गए गाड़ी के अंदर ही। बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने पूरी गाड़ी देखी, बोला बच्चों को ठीक है, अच्छा है, भले, बहुत अच्छा है, यूज करो। मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि बाबा बिल्कुल फ्रेंड के रूप में और ऐसे सहायक बनकर के, सहारा बनकर के रहे, जो उस समय तो बाबा पर इतना बच्चों का अधिकार था कि कोई भी काम पड़े बाबा हाजिर है। जमीन लेनी है, मकान बनाना है, ये करना है, विदेश जाना है, विदेश की सेवाएं 71 के बाद शुरू हुई, और जब पहला ग्रुप गया 6 लोगों का, बाबा से छुट्टी ली तो बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे जहां जाओगे वहां पर पहले से धरनी तैयार है, सब बच्चे हैं, आपको जाने की जरूरत है। उसी ट्रिप के अंदर लंदन, अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ये ग्रुप जो 6 लोगों का गया पहला 71 में, कई स्थानों पर बीज डाल के आया। लंदन में केंद्र खुल गया और उसके बाद सेवाएं शुरू हो गई 72 से। जर्मनी के द्वारा एक बाबा का पहला बच्चा आया यहाँ पर। 75 से बाबा के बच्चे विदेशी आना शुरू हुए। जितने साकार में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे, दादियों ने लक्ष्य रखा कि हर महावाक्य को मुझे पूरा करना है, और उसी अनुसार उन्होंने जो जो बाबा ने साकार में बोला था सब प्लानिंग की, और भाइयों का भी सहयोग लिया, और सब मिल करके 69 से बाबा के साकार महावाक्यों को प्रैक्टिकल रूप में सेवाओं को करने लगे। और अव्यक्त बाबा बीच बीच में सब प्रकार के डायरेक्शन देते, मुरलियां चलाते और बहुत गहरी शिक्षाएं देते। ज्ञान की सब्जेक्ट को बाबा ने अव्यक्त रूप में टच नहीं किया। साकार मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अव्यक्त बाबा ने समान बच्चों को बनाने के लिए बहुत परफेक्ट धारणा की बातें सुनाई। अव्यक्त मुरलियों के अंदर ज्ञान के राज स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो पहले ही बाबा ने सुना दिया। सेवाओं के बारे में बाबा ने जरूर कोई न कोई डायरेक्शन दिए, समय अनुसार जब बाबा से पूछा गया, प्लानिंग की गई तो बाबा बताते गए, लेकिन अधिकतर सभी मुरलियां एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया। एक बार मैंने खुद ही बाबा की मुरलियों से 84 टॉपिक्स पर एक किताब बनाई, 84 टॉपिक्स अलग अलग, और वो सब टॉपिक्स या तो गुणों पर हैं, या धारणाओं पर हैं, या किसी न किसी शक्ति पर हैं, और उन टॉपिक्स पर बाबा की फुल मुरलियां चली हैं। अभी अव्यक्त बाबा की मुरलियां बहुत लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक पर हैं। साकार बाबा की मुरलियां चारों टॉपिक को कवर कर रही है, और कई बार उसमें ब्रह्मा बाबा के अनुभव होने के कारण भक्ति की बातें भी आती हैं, कि बाबा ने इस जीवन में भी साकार में बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल जैसे बाबा को मिला तो बाबा अपने भक्ति काल के भी अनुभव सुनाते हैं। इसलिए साकार मुरली विदेशी भाई बहनों के लिए समझना थोड़ा सा लगता है, कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन जो पुराने बच्चे होते जाते, जितना पुराने होते जाते, मैंने देखा है उनको बहुत बाबा की मुरली से प्यार हो जाता, हर बात उनको समझ में आने लगती, क्योंकि हरेक ने भक्ति की है, भले इस जन्म में नहीं की, धर्म परिवर्तन हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन पिछले जन्मों का फल, भक्ति का ही फल ज्ञान है। ये ज्ञान जो हमको मिल रहा है, स्पष्ट हो रहा है, जितना हमने भक्ति की है उतना हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए बाबा के भक्ति काल के अनुभव साकार बाबा की मुरलियों में मिलते हैं। अव्यक्त बाबा ने चारों सब्जेक्ट जो पढ़ाई है साकार में उसकी ऑब्जेक्ट बताई, और साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने साकार में क्या किया है तुम बच्चों को वो फॉलो करना है। एक किताब मैंने और निकाली थी, शायद आप लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ी होगी, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। और ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की जब पुस्तक मैंने बनाई तो उसमें 16 टॉपिक लिए, ब्रह्मा बाबा के 16 कदम। पहले एक 10 कदम पर निकाली थी, फिर 16 कदम निकाले कि ब्रह्मा बाबा ने जो किया प्रैक्टिकल साकार में, जब वो अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने अपने पुरुषार्थ के बारे में बहुत सारी बातें सुनाई है। ब्रह्मा बाबा एक नामी से कैसे चले, एक नामी कैसे रहे, अथक कैसे रहे, निद्रा जीत कैसे रहे, क्षमा भावना कैसे रही, सहनशील कितना थे, रहम दिल कितना थे, उपकारी कितना थे, निंदा करने वाले को भी कैसे गले लगाया, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया पूरी जीवन में, अव्यक्त बाबा ने अपनी मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के सब कदम स्पष्ट सुनाए हैं। इसलिए जितनी किताबें मैंने जब बनाई वो कोई भी अपनी मत से नहीं, अव्यक्त बाबा की मुरलियों में जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं बाबा ने सुनाई हैं उन सब के आधार से वो किताबें बनी, और उनके आधार से बाबा अभी मुरली चलाते, बच्चे इसको फॉलो करो, इस 10 कदम बाबा के, ब्रह्मा बाबा के फॉलो करो। कैसे ब्रह्मा बाबा ने ये कदम उठाए, क्या क्या किया, साकार में सुनाया नहीं है, अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा के उस पुरुषार्थी जीवन का अनुभव अव्यक्त मुरलियों के अंदर आता है। इसलिए साकार मुरलियों को स्टडी करतेंगे तो चार सब्जेक्ट जो बाबा ने बताई उन चारों सब्जेक्ट के चार ऑब्जेक्ट हैं। आप गहराई से अगर देखेंगे, ज्ञान जो बाबा की समझ हम सबको मिल रही है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, मूल वतन का, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के पीछे हमारा एक उद्देश्य है जो बाबा ने हम सबको सुनाया है कि कोई भी आत्मा जो ज्ञानी है, समझदार है, वो जानती है ये कलयुग का अंतिम समय है, लास्ट जन्म है, अंत का भी अंत है, वापस घर जाना है, जो हिसाब किताब हमने बनाए हैं वो चुकतू करना है, नया कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाना है। माना इसकी ऑब्जेक्ट क्या हुई ज्ञान की, मुक्त स्थिति बनानी है, कहीं भी कोई बंधन नया क्रिएट ना हो। तो ज्ञान जो बाबा ने सुनाया है, जितना ज्ञान आप पढ़ेंगे अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा ये बात बाबा ने जो मुझे सुनाई इसके पीछे बाबा ये कहना चाहते हैं, बच्चे अब घर जाने का समय है, हिसाब किताब चुकतू करने का समय है, कर्म बंधन की रस्सियों को काटने का समय है, कोई भी नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करना, जो बना है उसको योग बल से या भोग करके चुप करना। तो ज्ञान इसलिए पढ़ाया जा रहा है इससे मुझे मुक्त स्थिति में रहना, जीवन में रहना, जीवन से मुक्त नहीं, लेकिन जीवन में रहते मुक्त स्थिति बनानी है। फिर योग के विषय में लास्ट में बाबा ने जो ये समय की मुरली चल रही है 68 की हैं, लास्ट मुरलियां हैं, और इनमें बाबा ने हर मुरली के अंदर आत्मा का इतना पाठ पढ़ाया है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, सब मुरलियों के अंदर अंडरलाइन है। कभी बाबा किस विधि से योग को ले जाता है, कभी किस विधि से, आज बोला विचित्र बन करके विचित्र को याद करो, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही सतो प्रधान आत्मा बनेगी। ब्रह्मा बाबा ने 68 के अंदर जो पहला पुरुषार्थ, गहरा पुरुषार्थ किया, उसी से संपन्न बने। उनकी वाणी उस समय की विशेष योग से कनेक्ट है, बहुत सी बातें योग से संबंधित हैं। और जिस तरह से बाबा कर रहे थे, क्योंकि बाबा उस समय उपराम हो चुके थे, आप सबको ये कहानी मालूम होगी, जो नए हैं उनको मैं सुना देता हूं। एक साल पहले 68 में बाबा ने एक संदेशी को बुलाया और संदेशी को बोला कि तुमको बाबा वतन में दिखाई देता है जो यहां है। ब्रह्मा बाबा साकार में थे और संदेशियां जब वतन में जाती थी तो बाबा को संपूर्ण स्वरूप में देखती थी। तो एक संदेशी को बुला करके बाबा ने कहा कि बच्ची तो इस बाबा को अच्छी तरह से देखो और उस बाबा को अच्छी तरह से देखना और मुझे बताना कि उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। क्योंकि इनको, ब्रह्मा बाबा को ये तो पता था ही यही बाबा ऊपर है, जब संपन्न बन जाएगा तो ऊपर अव्यक्त रूप में होगा। तो 68 में दिसंबर में बाबा ने एक साल पहले एक संदेशी को वतन में जाकर के पूछ करके आओ कि ब्रह्मा में इस साकार में और उस अव्यक्त में कितना अंतर है। तो उसने बताया कि बाबा ऊपर वाला बहुत चमकीला है, बहुत उसके अंदर लाइट है, बहुत माइट है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी छाया है, कुछ न कुछ थोड़ा दिखाई देता अभी है, वैसा नहीं है। बस बाबा को धुन लग गई कैसे मैं वैसा बनूं। साकार में बाबा उस समय इतने सारे बच्चे आते थे, मिलते थे, गोद लेते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, घंटों बैठते थे। बाबा ने सब विस्तार को समेट लिया, बाई मुक्ता जितनी थी। तो बाबा की बात मैं सुना रहा था कि बाबा एक साल पहले एक मुरली चलाई, याद होगी कुछ समय पहले वो रिवाइज हुई थी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा था कि सबसे अच्छी मौत है हार्ट अटैक, बैठे बैठे एक सेकेंड में उड़ जाएं, डॉक्टर आए ही नहीं, बुलाना भी न पड़े, एक सेकेंड में आत्मा चली जाए। कुछ समय मुरली में एक पॉइंट आई थी, ये उसी समय की मुरली है, एक साल पहले बाबा ने मुरली सुनाई थी कि बच्चे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, कोई की सेवा भी न लेनी पड़े, ऐसे आत्मा बैठे बैठे हार्ट फेल हो और ऐसे चली जाए, ये बहुत अच्छी मौत है, साकार बाबा की मुरली में था। तो बाबा ने उसी समय पुरुषार्थ शुरू किया, उपराम हो गया, सब बातों से न्यारा हो गया, सब समाचार सुनना, उसका सार सुनना ना, बस ज्यादा विस्तार बंद कर दिया, पुरुषार्थ में लग गया, एकदम गहन तपस्या। उसी समय के तीन शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये तीन बातों को लेकर के बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनने का समय आया, फिर संदेशी को बुलाया एक साल के बाद, और फिर कहा कि अब देख के आओ उसमें और इसमें कितना अंतर है। फिर जब संदेशी गई तो बोलती है, बाबा जैसा वो है ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, समान हो गए। तब बाबा समझ गया, और जो बाबा में बहुत अटैच थे, बहुत नजदीक थे, उनको सेवा पर भेज दिया, क्योंकि अगर बाबा उनके सामने शरीर छोड़ेगा तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। तो दीदी थी बहुत प्यार, बाबा के नजदीक थी, बहुत प्यार था साकार से, तो दीदी को इलाहाबाद भेज दिया सेवा पर, और दादी थोड़ी बहुत मजबूत शक्ति थी, तो दादी को बॉम्बे जा रही थी, दादी बोला बच्ची अगर कोई सेवा न हो तो यहीं रुक जाओ। 16 तारीख को जा रही है, पार्टी को भिजवा दिया कि पार्टी भेज दो, तुम यहीं रुक जाओ। और दादी को रोक करके बाबा ने पूरा घर दिखाया, उंगली पकड़ करके एक एक स्थान पर ले गया, मजदूरों से मिलाया, मकान कहाँ बन रहा है, स्टॉक कहाँ रखा है। दादी समझ नहीं पाई क्यों बाबा मुझे सब सिखा रहा है, मैं तो सेवा पर बॉम्बे में बैठी हूँ, मुझे क्या करना है इन बातों से। लेकिन बाबा उसको उंगली पकड़ के एक एक चीज दिखाई, समझाया, और दिखा करके समझा के 18 तारीख को सवेरे मुरली नहीं चलाई, और शाम को कहता है आज बच्चों को मुरली नहीं मिली है, याद करें सब बच्चे, अभी सबको बुलाओ। 8:30 बजे सब पूरे क्लास को इकट्ठा किया, और 8:30 बजे इकट्ठा करके अच्छी तरह से मुरली सुनाई, और मुरली सुना करके लास्ट में गेट पर आके बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होके रहना, नम्र चित होके रहना, अच्छा विदाई। कभी बाबा विदाई शब्द मुरली के अंदर यूज नहीं करता था, लेकिन उस दिन गेट पर खड़े होकर के ऐसे विदाई लेकर के और दादी का हाथ पकड़ के कमरे में आया और चारपाई पर बैठ गया, तो दादी ने समझा शायद आज बाबा को कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए बाबा बात नहीं करना चाहता है। तो दादी को ऐसे दृष्टि देने लगा और ऐसे हाथ लिया हाथ में, और हाथ में हाथ पकड़े पकड़े ऐसे हाथ चला गया। दादी समझे ये हाथ बाबा का ढीला क्यों हो गया है, क्या हो गया है, तो दादी ने चुपचाप बाबा को ऐसे लिटा दिया कि बाबा आप लेट जाओ। दादी ने नहीं समझा ये सदा के लिए लेट गए। दादी ने ऐसे बिस्तर पर लिटाया और फटाफट बोला कि डॉक्टर को बुला के ले आओ, बाबा को लगता कुछ तकलीफ है। तो उस समय डॉक्टर घर में तो कोई था नहीं, बाजार में डॉक्टर था, एक साइकिल पर भाई गया, गाड़ियां तो इतनी थी नहीं। जब तक डॉक्टर वापस आया 1.5 घंटे में 10 बजे, तब तो बाबा तो शरीर भी ठंडा हो चुका था। उसने आते ही कह दिया कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, ये आप लोग इतनी लेट क्यों बुलाया, बोला यहाँ तो पता ही नहीं चला। फिर दादी ने उस समय एक पूरी नाइट बैठ करके सबको फोन किए कि बाबा है लेकिन आप आओ, बाबा अपने इस देश से न्यारा हो गया है, अव्यक्त हो गया है। फिर सब आना शुरू हुए और 21 तारीख तक सब जब पहुंच गए तब संस्कार हुआ पांडव भवन में ही, और उसके बाद बाबा आए, उसके बाद बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। और अव्यक्त पाठ भी बाबा ने तो यही कहा था कि बच्चे 5-6 साल चलेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं बच्चे वृद्धि को पाते जाते, नई नई वृद्धि हो रही है, और बाबा अभी भी बच्चों को अव्यक्त पालना दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सकास दे रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, और कभी भी ये फीलिंग नहीं की देने दी कि बाबा नहीं है। आज तक भी ये अनुभव होता कि बाबा मधुबन में है, बाबा यहाँ है, सब बच्चों से मिलता है। तो आज हम सब 45 वर्षों से अव्यक्त पालना ले रहे हैं। मुरली के अंदर जो वरदान शुरू किए, स्लोगन शुरू किए, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको 10 मिनट दूंगा प्रश्न उत्तर के लिए, ठीक है? 15 मिनट में प्रश्न उत्तर पूछना। मैं हेमलता बहन इधर आ जाना, हम प्रश्न उत्तर रखेंगे। वरदान की बात सुनाता हूँ। 88 में आप सबको मालूम होगा गुलजार दादी का एक बड़ा ऑपरेशन 89 में हुआ, और 89 के ऑपरेशन के बाद बाबा का पार्ट जो पर्सनल मिलने का था वो पूरा हो गया। 88 में बाबा ने एक दिन अचानक कहा कि बाबा बच्चों से, मधुबन निवासियों से अकेले अकेले मिलेगा। उस समय तक हम मधुबन में 120 भाई और करीब 40 बहनें थी टोटल। ओम शांति भवन तो तैयार था, 83 में बना था। बाबा ओम शांति भवन में आए, शाम को 6:30 बजे बाबा की पधरावनी हुई, पहले आधा घंटा मुरली चली, और उसके बाद भाइयों के नंबर लगे मधुबन निवासियों के। पूरी नाइट उस समय मेरी ड्यूटी लिखने की थी, बाबा जो बोलते थे मैं हाथ से लिखता था। उस समय कंप्यूटर और टाइप, हमारे पास टेप मशीन भी नहीं थी, रिकॉर्ड भी नहीं करता था, मैं टाइप हाथ से लिखता था। तो बाबा ने रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे में 120 भाइयों से मिला। मुझे भी लास्ट में 6:30 बजे मिलने का चांस मिला, माना लास्ट में मिलने गया बाबा से। तो जो सबके वरदान थे एक एक के, वो इतने अधिक थे कि मैंने सारी डायरी भर ली, लिख डाला सारा लिखा। और दूसरे दिन जब उसको टाइप किया तो मैं दादी को हमेशा बताता था कि दादी आज बाबा ने ये वरदान इतने दिए, इतना बोला, क्योंकि दादियों को बाबा कहता था तुम रात भर नहीं बैठो, बाबा बच्चों से मिलेगा, तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुमको दिन में काम करना है। इसलिए रात को बाबा मुरली सुना करके उनको भेज देता था, वो विश्राम करती थी, और सभी भाई बहने नंबरवार बाबा से मिलते रहते थे। फिर बाबा जब विदाई का समय होता था तो दादियों को बुलाते थे और दादी आकर के बाबा को भोग खिला करके विदाई देते थे। तो दादी 7 बजे सवेरे आई मिलने के लिए। दादी ने कहा बाबा इतना क्या मिला, इतना क्या बात किया, 120 भाई सारी रात मिले, बहने ऐसे रह गई, बहनों का टर्न ही नहीं आया। तो दादी ने मुझे बुलाया कि आज बाबा ने क्या रात भर किया। मैं, दादी इतने वरदान दिए हैं जो मेरी डायरी भर गई, मोटी हो गई। तो बोलती वो टाइप करके ले आओ मेरे पास। तो मैंने वो वरदान जब टाइप किए तो कहने लगी ये क्या करोगे। हमने कहा दादी जिनके जिनके हैं उनको मैं टाइप करके दे देता हूँ। बोली बस उसी एक व्यक्ति के लिए बाबा ने बोला है क्या, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं उनको तुम किसी रूप से सेट करके भेजो, नाम नहीं डालो किसके लिए बोला, लेकिन तुम उसको वरदान का रूप दे करके भेजो। तो बाबा ने मुझे भी ये वरदान दिया था कि तुम्हें बुद्धि का वरदान है। जब मैं मिला था उस दिन तो बाबा ने मुझे कहा कि तुमको बुद्धि का वरदान है, तुम्हारी बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि तुमने इस बुद्धि को स्वोन्नति में ही सदा लगाया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है और अच्छे से अच्छा ये बुद्धि कर लेगी। तो बाबा ने बुद्धि को वरदान दिया था। दादी ने कहा इसको वरदान का रूप दे दो। तो जो पहली लाइन है भाव वाली, उसमें मैंने 3 लक्ष्य रखे, क्योंकि बाबा ने भाव शब्द से वरदान नहीं दिया कभी, उसका स्पष्टीकरण जो है वो बाबा का ही है। लेकिन जो पहली लाइन है उसमें मैंने लक्ष्य रखा 3 बातें होनी चाहिए। कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, उससे सिद्धि क्या है। आधार, विधि और सिद्धि एक लाइन के अंदर तीनों बातों को सेट करने का मैंने प्रयास किया है। कोई भी वरदान आप पढ़ेंगे तो पहली लाइन के अंदर वो तीनों बातें होंगी, उसका स्पष्टीकरण बाबा के ही शब्द है, उसमें कोई भी एडिशन करेक्शन नहीं है, सिर्फ चेटिंग है वो। लेकिन पहली लाइन मैंने बनाई है भाव की। जब मैंने 88 में 89 में वरदान शुरू किया उसी अपने मधुबन के वरदानों से सेट किया, तो वो 120 वरदान पूरे साल मैंने चलाए। हर मुरली के नीचे मैं एक वरदान 60 में डालता था, 4 लाइन 5 लाइन, और वो एक साल तक चला। फिर मैंने दादी को बोला, दादी अब वरदान तो पूरे हो गए, अभी बंद कर देता हूँ, अब क्या करूं। बोले ठीक है, भले बंद कर दो, पूरा हो गया। लेकिन सभी ब्राह्मणों की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया जो आई, उसका जो रिस्पॉन्ड मिला कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ का साधन है, बहुत अच्छा मनन चिंतन करने का एक अच्छा खुराक है, ये मुरली के अंदर बंद नहीं होना चाहिए। अब मैं तो फंस गया, बाबा तो वरदान देके चला गया और दादियों ने मुझे कहा कि अब कैसे भी करो तुमको रोज वरदान लिखना है। तो फिर मैंने सभी मुरलियों को 69 से जितनी मुरलियां चली उनकी दोबारा स्टडी की, और स्टडी करने के बाद हर मुरली से कोई 3 कोई 4 वरदान निकाले, और 6 साल तक कंटिन्यू एक भी वरदान को रिपीट होने नहीं दिया। 5 साल की मुरलियां हैं लेकिन वरदान 6 साल के निकल आए, और हर मुरली के नीचे नया नया वरदान शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक बार इसको चेंज करके देखते हैं, फिर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या होती। तो वरदान की जगह पर मैंने एक शब्द यूज किया, फरमान। फरमान लिखा और उसका स्पष्टीकरण लिखा। जब फरमान शब्द लिखा तो डबल विदेशी भाई बहनों ने कहा, दादी बाबा को कहा कि ये फरमान शब्द तो आर्डर होता है, ये हार्ड लगता है, मेहनत वाला लगता है, इसको नहीं भेजो, वरदान ही चाहिए। तो दादी ने कहा ये फरमान बंद कर दो, ये सब डर रहे हैं, वरदान ही लिखो। तो 3 महीने के बाद वरदान फरमान को वरदान में फिर चेंज किया। इस प्रकार से आज कितने वर्ष हो गए बाबा की मुरलियों में वरदान आते हैं, वो अव्यक्त मुरलियों से हैं, और फिर उसमें ही स्लोगन जो है वो भी अव्यक्त मुरली से है, बाकी धारणा की पॉइंट्स इसेंस वो सब उसी साकार मुरली से, उसी दिन की मुरली से है। तो इस प्रकार अव्यक्त मुरली और साकार मुरली का अंतर है, और साथ साथ हम सबकी पढ़ाई है, मनन चिंतन की खुराक है। किसी को भी व्यर्थ से अगर मुक्त होना है, बाबा की मुरलियों को बार बार स्टडी करो, 5 बार 10 बार जितना समय मिले जब मिले बाबा की मुरली पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नवीनता मिलेगी, कुछ न कुछ अच्छा चिंतन मिलेगा। मुझे आज तक ये नहीं लगता कि मैंने 5 साल पहले तो ये मुरली टाइप की थी, हर दिन नई लगती है, हर दिन उसमें नई बात मिलती, नया उमंग उत्साह भरता। तो आप सभी बाबा की मुरली प्यार से सुन करके, ज्ञान है जीवन मुक्त बनाने के लिए, योग है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, धारणाएं हैं सत धर्म की स्थापना के लिए, और सेवा है राजधानी बनाने के लिए। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान से आत्मा को मुक्त बनाना है, योग से आत्मा को बिल्कुल प्योर सतो प्रधान बनाना है, और धारणाएं ऐसी करनी है जो एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो, और सेवा इसलिए करनी है कि हम सब एक राजधानी बना रहे हैं, हम सबको अगर राज्य पद लेना है तो प्रजा भी बनानी है। तो 4 सब्जेक्ट पर ध्यान दे करके हम स्टडी करेंगे तो हम नंबर 1 ले सकते हैं। बाबा कहते 4 सब्जेक्ट में नंबर 1 लो। ओम शांति। अभी आप 10 मिनट अगर
कुछ
5-7 मिनट कोई क्वेश्चन हो पूछना चाहे मुरली से,
कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भाई साहब जैसे बहुत ही ज्ञान के खजाने हैं, ज्ञान के खजाने से तो बहुत कुछ तरंगे उठती है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ये शायद दूसरी भाषा की है,
कई भाषाओं के है जिसको पूछना।
इनकी भाषा की कोई बहन है क्या?
पता नहीं, इंग्लिश
इंग्लिश चाहिए ना उसको.
नो लैंग्वेज.
Om Shanti, me llamo Reggie y soy de España. Yo siempre dice rumiar las murli, leerlas muchas veces. Estamos en periodo de transformación, queda muy poco, y yo quiero ir a las de oro, está claro, y no quiero ir como súbdito. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde yo puedo sacar tiempo para poder rumiar las murli? Ya no digo 5 veces, al menos 3 o 4. Si tú tienes un horario de trabajo de 8 horas cada día, haces servicio en el centro, porque eres un karma yogi fuerte en el centro, eres ama de casa, madre en casa, que haces las tareas de casa, y sigues el sirimá, ¿de dónde yo puedo sacar tiempo para poder rumiar las murli? Y entonces yo tengo pesar, porque a mí me gustaría rumiar las murli, porque soy una murli dana neta.
¿Lo traduce o no? ¿No se lo traduce?
Nobody can translate it.
Language problem.
Is it Spanish language?
Spanish? Your Spanish?
Anybody can translate little bit so far? Yeah.
Yes, English.
Yeah, little bit, she can do.
La traductora me puede traducir.
Live in America.
So really, really English. The sister said about she is very busy. She is karma yogi in Baba house. She is works, lucky works. She has family. She loves the murli a lot. But the question is, how can study the murli 6 times? Because she doesn't have time.
क्या पूछ रहे हैं?
वो बोलते हैं बहुत बिजी है, काम करती है, ये सब कुछ करती है. तो वो 6 times she want to read murli 6 times. She want to read.
कोई बंधन नहीं है, जितना कर सकते उतना करे ना. 6 times पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं, जितना टाइम मिलता उतना पढ़ो.
The brother is saying that you don't have to read the murli 6 times. How much time you have, you can read. Even 1 time, 2 times, how many times you can read. According to your busyness.
उसको भी इंग्लिश नहीं आता.
हो गया अपना काम तो, वाइब्रेशन पहुंच गया.
Yes,
sir. Yes, brother.
In taking our notes from the murli, when the murli is read, What do you recommend in taking our notes? What should we look for into putting in our notes to find our points that speak directly to us? And how should we? What's your recommendation of keeping notes?
जैसे मुरली के notes आप बनाते हैं मुरली सुनते समय notes बनाते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे कि वो पॉइंट जो उनके काम के है वो आए.
मुरली में तो
व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू इज यूजफुल फॉर यू, राइट? व्हाट काइंड ऑफ युक्ति और मेथड यू मस्ट यूज? दिस व्हाट क्वेश्चन यू हैड, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन यू हैव. एनीथिंग, आपको कुछ ऐसा युक्ति बताना है जिससे कि ऐसे पॉइंट्स उसके सामने आए जो लिखे उनके काम की चीज हो, और किस प्रकार वो मुरली के पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करे, किस किस रूप में लिखे, जिससे हम लोग जाना.
वैसे हम लोग पहले जब नोट्स लेते थे मुरली के, तो 4 भाग करके लिखते थे. दीदी ने हमको ऐसे सिखाया था कि ज्ञान के सब्जेक्ट को ज्ञान में लिखो एक टॉपिक के अंदर, फिर योग के सब्जेक्ट को योग में लिख लो. किसी दिन बाबा की मुरली योग पर बहुत होती है, तो योग की पॉइंट उस दिन लिखो. किसी दिन धारणा पर बहुत होते हैं, धारणा के पॉइंट्स लिखो। जिस सब्जेक्ट पर बाबा की मुरली चल रही है, हाईलाइट है, प्रश्न से पता चल जाता है, उस सब्जेक्ट को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो कई पॉइंट्स एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। मुरली की पॉइंट्स हमारे मनन चिंतन के लिए हैं, मन में व्यर्थ ना आए, इसलिए बाबा की मुरली को हम उसी ढंग से सुने जो हमारी बुद्धि एकदम उसमें लग जाए कि इसी को हमें चिंतन करना। तो सब्जेक्ट को अलग अलग करके, समझ करके कि आज बाबा ने ज्ञान के ऊपर चलाया, आज बाबा ने योग पर चलाया, धारणा पर चलाया या सेवा पर। कभी कभी एक मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट होती हैं और कभी कभी कोई विशेष टॉपिक किसी एक सब्जेक्ट को स्पष्ट करती है। तो जिस दिन जो टॉपिक की ज्यादा और अच्छी पॉइंट्स हैं, वरदान से पहले प्रश्न उत्तर से इस सेंस से आपको पता चल जाए, उसको नोट्स ले लो, तो वो मनन चिंतन के लिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा।
यू कैच ब्रदर?
ओके, थैंक यू।
सो ओम शांति। क्वेश्चन इज इट अलाउड टू रीड मुरली before Amrit Vela of the day, or is it against Srimad?
Amrit Vela ke pehle murli padh sakte hai ya nahi padh sakte?
Jab bhi time milta hai zarur padho, jab aap samajhte ho hamari buddhi fresh hai to padh karke jana chahiye, kyunki aaj kal videshiyon ko pehle hi murli mil jati hai। Hamare Bharat ke andar yahan par ye rivaj nahi hai ki pehle murli di jaye uske baad class mein jaye, lekin aap logon ko to pehle murli haath mein hoti hai। जब समय मिलता है अमृत वेले योग के बाद मुरली पढ़ करके फिर क्लास में जाते हैं तो और अच्छी तरह से पता चलता है कि आज बाबा ने क्या कहा, रिवाइज हो जाती है। तो अच्छी विधि है, अगर आप अमृत वेले पढ़ सकते हो तो पढ़ के जाना चाहिए, टाइम है तो पढ़ना चाहिए।
Yesterday Baba said कर्माति शरीर, what does it mean? कर्मातीत शरीर शब्द बाबा ने कल यूज किया है, कर्मातीत शरीर।
कर्मातीत शरीर,
हाँ जी,
कर्मातीत शरीर माना अव्यक्त शरीर, माना जो अव्यक्त स्थिति को ही कर्मातीत शरीर शब्द आ सकता है, ऐसा शब्द था मूल में,
मेरे को तो याद नहीं,
मेरा
शब्द याद नहीं है।
कर्मातीत स्थिति होगा, कर्मातीत शरीर नहीं,
शरीर था,
शरीर मूल्य में,
हाँ जी,
मेरा अंडरलाइन नहीं गया। कर्मातीत शरीर अगर है तो अव्यक्त स्थित शरीर को कह सकते हैं,
शरीर
था, बताइए फिर
है,
हाँ जी,
मुरली भी लेके आए
देना मेरे को। कर्मातीत स्थिति के ऊपर बाबा स्पष्ट करता है, कर्मातीत शरीर कभी ऐसा शब्द आया नहीं है, अगर कोई आया होगा तो अव्यक्त शरीर से संबंधित होगा, मैं देख के बता दूंगा।
मेरा क्वेश्चन है, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश,
एनी लैंग्वेज,
की साकार मुरली के टाइम शिव बाबा डेली आया करते थे, कोई फिक्स टाइम था या
ऐसा था? जब तक बाबा साकार में थे तब तक आने जाने का पता नहीं चलता था, उनका माध्यम थे, जब जरूरत होगी प्रवेश किया, जब जरूरत नहीं है तो चला जाता था। किसी एनी टाइम भी बाबा आ सकते थे, बुलाना नहीं पड़ता था, आह्वान नहीं करना होता था, भोग नहीं लगाना होता, जैसे अभी हम करते हैं। ये ट्रांस के द्वारा बाबा का पार्ट है। साकार के समय बाबा का वो रथ था, ब्रह्मा बाबा, तो जब बच्चे मिलने आते थे बाबा आ जाता था, जब मुरली चलानी होती थी बाबा प्रवेश कर लेता था, कभी भी एनी टाइम था ही बाबा उसके अंदर।
मुरली टाइम बाबा मस्ट बी स्पीकिंग ना, अर्ली मॉर्निंग मुरली, तो
बाबा किसी समय भी ब्रह्मा का उनका तन था वो। आप बच्चों को कमरे में मिलने के लिए गए तो क्या शिव बाबा नहीं मिलेगा? तो उस समय भी शिव बाबा आ जाता था, ब्रह्मा का वो रथ था, माना उसने उसको लिया हुआ था किराए पर सदा के लिए, तो सदा यूज कर सकता था, लेकिन कहता है मैं सदा इस पर बैठूंगा तो थक जाएगा, इसलिए मैं कभी यूज करता हूँ कभी निकल जाता हूँ। तो केवल मुरली के समय बाबा नहीं होता था, लेकिन एनी टाइम कोई बच्चा बाबा से मिलने आया है तो शिव बाबा अपना काम उसके द्वारा कर सकते।
लेकिन जो ऑफिशियल मुरली है वो तो एक ही टाइम,
ऑफिशियल मुरली तो एक टाइम ही चलती थी, ऑफिशियल जो प्रिंटेड मुरली
तो कभी भी आ सकते हैं, ऑफिशियल मुरली तो एक ही होंगी,
लेकिन उसके लिए बाबा को कोई बुलाना नहीं पड़ता था। बाबा बैठा है, बाबा मुरली चलाना शुरू किया, उसे बाबा आ गया, अपना मुरली चला के चला गया, उसको आने में कितना देर लगती।
You said earlier in your talk that when Brahmadatta became Avyakt, then he would still be Avyakt till the end. My question is, can Krishna be born while Brahma Baba's in the subtle region?
वही तो आत्मा है ना, एक ही आत्मा है. अगर अव्यक्त वतन में बाबा है और आ जा रहा है तो श्री कृष्ण कैसे बनेगा? जब जन्म हो जाएगा तो फिर बाबा का अव्यक्त पार्ट तो चल ही नहीं सकता. ये तो जब समझने की बात है ना कि वही आत्मा एक है, अभी वो अव्यक्त वतन में बैठी है, ऊपर परम धाम जाएगी फिर घर आएगी, यहाँ आएगी साकार में श्री कृष्ण के रूप में. जब परम धाम जाएगी तो विनाश भी होगा, भरात भी जाएगी, अकेला तो नहीं जाएगा. तो अभी विनाश नहीं हुआ है, अव्यक्त पार्ट चल रहा है. जब तक सफाई नहीं हुई तब तक श्री कृष्ण की आत्मा नहीं आएगी. तो उसके लिए बाबा अव्यक्त वतन में है, अभी श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, और होना होगा तो उसके पहले विनाश होगा, सफाई होगी, आत्माएं वापस जाएंगी, फिर आएगा, टच करके आएगा, भले जल्दी आएगा लेकिन आएगा, वतन जाएगा तब आएगा, फिर अव्यक्त पार्ट नहीं चलेगा. ठीक है, और कुछ? चलो अच्छा, ओके.
आपको ये मालूम हुआ होगा कि बहुत सारी बातें जो पहले नहीं मालूम थी वो आज मालूम हुई. मुझे भी ऐसा हुआ है, हालांकि मैं भी 45 ईयर से ज्यादा ज्ञान में चलती हूँ, लेकिन कई बातें हमें भी नहीं पता थी, तो अच्छा लगा. तो फिर से एक हाथ की ताली बजा करके. साढ़े बारह का गीत बजे. Thank you.